वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणान्तिके। सप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट होंगे विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडोती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओंग विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य दंडोत प्रणति पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। हमने दो तीन दिनों तक कृष्ण की मधुर लीलाओं का कुछ वर्णन किया। इसमें भी अभी बहुत सी चीजें रह गईं। कृष्ण लीला के दामोदर बंधन में यशोदा जी कृष्ण को बांधना चाहती थी किंतु सवेरे से दोपहर तक नहीं बांध सकी। जितनी भी रस्सियां जोड़ती गईं दो दो अंगुल कम पड़ती गईं। तीन अंगुल नहीं, चार अंगुल नहीं, आध अंगुल नहीं, एक अंगुल नहीं, दो अंगुल। क्यों? कृष्ण भगवान है, उनकी जोग माया शक्ति बड़ी ऐसी हैं जो नहीं होने का वो भी करा देंगी। कृष्ण ने सोचा जे मैं सखाओं के साथ में कैसे खेलूंगा यदि मैया बांध देगी। गाय हमारे बिना दूध नहीं देती, वो दूध कैसे देंगी। तो मैं मेरी सब लीला अधूरी रह जाएगी, इसलिए यशोदा मां न बंधे। भगवान को बांधना बड़ा भारी कठिन है किंतु प्रेम से बांधे जा सकते हैं, अपने साधन से नहीं। किंतु बिना साधन से भगवान की कृपा पर निर्भर रहने से नहीं होगा, कुछ साधन भी करना होगा। जैसे यशोदा मैया सवेरे से बांधती गई, मैं बांधूंगी जन भर बांधूंगी तभी बांध करके रहूंगी, इस प्रकार से कठोर साधन करना पड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान का भजन, इसको देख करके भगवान का हृदय पिघल जाएगा, उनकी कृपा अपने आप आ जाएगी। ये जो दो अंगुल थी, एक है अपना साधन का परिश्रम और दूसरा है भगवान की कृपा। बिना भगवान की कृपा के लाख साधन करने पर भी नहीं होगा। यह ब्रज की भक्ति बड़ी भारी कठिन है किंतु साधन करने से भगवान की कृपा होगी और उनकी जोग माया वहां से हट जाएगी और कृष्ण अपने आप बन जाएंगे। इस तरह से बहुत सी उनकी मधुर लीलाएं हैं, बड़े कृपालु हैं। इसलिए कृष्ण का भजन को छोड़ करके जो दूसरे का भजन करता है पूरा बुद्धिमान नहीं है, बतलाया। अब हम कुछ कृष्ण की ही रामलीला का कुछ थोड़ा सा वर्णन करेंगे संक्षेप में। बहुत सावधानी से सुनेंगे, नए नए तत्वों को आप लोगों को जानकारी होगी। पहली बात, रामलीला में ऐसी करुण कथाएं हैं जो सबका हृदय द्रवित हो सकता है, सभी लोग रोने लगते हैं। विशेष में रामचंद्र जी के साथ में कैकेयी जी का चरित्र, सीता जी का चरित्र, कौशल्या जी का चरित्र, आदर्श भरत जी का चरित्र, सेवा में लक्ष्मण जी का चरित्र, अलौकिक चरित्र, ये सब कहीं दुर्लभ हैं, कहीं नहीं मिल सकते। एक एक आदर्श लेकर के मर्यादा की स्थापन करने के लिए अपने ये परिकरों के साथ में जगत में अवतीर्ण है। कैकेयी की महिमा नहीं जानने से लोग उनको भले ही दोष दे, किंतु उनका चरित्र बड़ा उज्ज्वल है। आप लोग जानते हैं महाराज दशरथ को 360 रानियां थीं, किंतु किसी को बच्चा नहीं था। महाराज जी चिंतित थे, हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। एक समय वो शिकार खेलने के लिए गए और शिकार करते 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 कैकई के देश में कैकई राज्य में कैकई महाराज थे, वहां पर पहुंच गए। जब शाम हो गई तो अपने राज्य में नहीं लौट सके, तो अपने मित्र कैकई के पास में चले गए। शाम का समय था, इसलिए महाराज कैकई ने अपनी लड़की बेटी को, जो बड़ी सुंदरी थी, अभी 16-17 वर्ष की थी, बड़ी अद्भुत सुंदरी, रूपवती, गुणवती, शीलवती, सब प्रकार में योग्य थी। महाराज ने आदेश दिया, महाराज कौशल्या ने कौशल देश के महाराज दशरथ आए हैं, आज यहीं पर ठहरेंगे, इनकी खाने पीने सोने इत्यादि की सारी व्यवस्था तुम्हारे ऊपर में हम छोड़ते हैं, तुम देखना। कैकई बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी सेवा में लग गई। खाना पीना, शयन के लिए जो कुछ जरूरत थी सारी सेवाएं दी और बड़ी अच्छी तरह से वो रहे। महाराज दशरथ इस लड़की का रूप और गुण, शील स्वभाव और सेवा की बातों को देख करके बड़े बड़े प्रसन्न हुए। मन ही मन में संकल्प किया कि हमारी तो किसी रानी को लड़का नहीं, यदि इस लड़की से मेरी शादी हो जाती तो मैं इसको लेकर के अपने पास रखता, हमारी बड़ी सेवा करती। मनी मैं संकल्प किया था। सो गए, सवेरे उठे, अब जाने का समय हुआ, इसलिए महाराज कैकई के पास में गए। जी महाराज, आप मेरे मित्र हैं, अब तो मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, तब मेरी एक इच्छा है, ये आपके अधीन है, पूरा करें या ना करें, मैं आपके सामने अभिलाषा मेरी प्रकट करता हूं कि आपकी लड़की सब प्रकार से बड़ी योग्य है और विवाह के योग्य भी हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि ये लड़की हमको दे दीजिए, मैं इसे साधु करूंगा और इसे अपनी रानी बनाऊंगा। महाराज ने कहा, यह तो असंभव है, ये नहीं होने का। हां, एक स्थिति में हो सकता है, यदि आप प्रतिज्ञा करें कि मैं इससे यदि लड़का हो गया तो यही लड़का राज्य का अधिकारी होगा, इसी के लड़के को राज्य राज्य मिलेगा, ये यदि वचन दीजिए तो मैं इस लड़की के साथ में आपकी शादी कर दूंगा। महाराज ने कहा, बड़े प्रसन्न हुए, हमको तो कोई स्त्री से हमारा लड़का ही नहीं, यदि इस लड़की से शादी हुई और मुझको लड़का हो गया, ये तो हमारे बड़े भाग्य की बात होगी, यही लड़का ही गद्दी पर बैठेगा, दूसरा तो लड़का है ही नहीं है। बड़े प्रसन्न हुए और उनको कन्यादान दे दी, वहीं पर शादी हुई और शादी हो करने के बाद में अयोध्या में लौटे। किसी को शादी नहीं और यह बात किसी को मालूम नहीं, किसको मालूम? कैकई, कैकई के पिता और कैकई, तीन जनों को ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं। कुछ दिन चलता गया, चलते 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 देवासुर संग्राम हुआ और उसे महाराज दशरथ बड़े भारी योद्धा थे, उनको स्वर्ग में बुलाया दानवों के लिए और दानवों को युद्ध में उन्होंने पराजित किया, महाराज दशरथ। और जिस समय लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उस समय में इनके रथ का धुरा जिसमें चक्के रहते हैं वो गिर गया, टूट गया, और झट कैकई उनके साथ थी, कूद करके और रथ को संभाल लिया, गिरने नहीं दिया, और इतने में इनकी विजय हुई। महाराज दशरथ उनसे बोले, ओह तुमने आज हमको बचा दिया और तुम्हारे बल पर ही हमने शत्रुओं को हराया है, और देवता लोग हमको इतना अभिनंदन कर रहे हैं, किंतु सबका मूल कारण है ये, तुमने हमारे रथ की धुरी को रखा, इसलिए तुम कोई भी दो बार हमसे मांग लो, कोई भी दो बार जो चाहिए। ओ मैं स्त्री पत्नी कोई बर लेने के लिए तो आपकी सेवा नहीं कर रही, सो बर अभी मैं अपने पॉकेट में रखती हूं, जब जरूरत होगी तो हम देख लेंगे, हम मांग लेंगे, ये हमारा दो बर रहा आपके निकट, जब इच्छा होगी लेंगे। ठीक, बात यहां तक समाप्त हो गई, फिर वहां से लौटे, फिर अपना राजधानी में रहे। इतने में किसी प्रकार से वो एक ऋषि मिले और ऋषि ने यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने में कौन ऋषि, श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ कराया और इनको चार राजकुमार हुए, चार तीनों रानियों से, कौशल्या से राम हुए और कैकेयी से हुए भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दो ये चार बेटे हुए, बड़े सुंदर सुकांत। किंतु सबसे पहला किसका जन्म हुआ, रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इसके बाद में तो फिर भरत जी का, इसके बाद में लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न का। राजा बड़े प्रसन्न हुए, चारों तरफ में बधाइयां बजने लग गई है? और दशरथ जी भी ये भूल गए सब चीजें। कुछ दिनों के बाद में एक दिन जब रामचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए, एक दिन ये कौशल कैकेयी की गोद में बैठे थे। कैकेयी मैया बहुत प्यार करती थी, भरत से भी अधिक राम को प्यार करती थी, जैसे रोहिणी जी बलदेव जी की अपेक्षा कृष्ण को ही अधिक प्यार करती थी, ठीक ऐसे ही सब समय इन्हीं की गोदी में खेलते रहते थे राम, और भरत जी कैकेयी की गोद में, वो भी उसको बड़ी मानती थी। सभी रानियों में बड़ा मिल था। बड़ी प्रसन्न होकर के ये सब एक दिन इनकी कैकेयी की गोद में खेल रहे थे राम, हठात रामचंद्र छोटे सा बच्चा और मैया की गोद में, उनका ये पकड़ करके थूटनी, मैया तू मुझे बड़ी प्यार करती है तो हाँ प्यार तो करती हूँ तुझे, तो एक चीज मैं तुमसे मांग लेना चाहता हूं, मुझे कृपा करके ये हमको दे दो, तो तुम जो कुछ बोलोगे वही मैं तुमको पूरा कर दूंगी। तो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीन बार कहा लिया। और इसके बाद में बोले रामचंद्र जी, देखो मैया तुमको एक कठिन काम हमको देना है, मैं देवताओं के कल्याण के लिए मैं आया हूं इस जगत में, और मुझको असुरों का संहार करना है, जो भक्ति के विरोधी हैं, संसार के विरोधी हैं, मर्यादा के विरोधी हैं, इसलिए मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं कि तुम हमको ये वर दो, जो भरत तुम्हारा जो बेटा है वही राजगद्दी पर बैठेगा, तुम महाराज दशरथ से मांग लेना, और मेरे लिए तुम वन के लिए मांगना, जैसे ये 14 वर्ष वन में रहे। और सुनते ही वो मूर्छित हो गई कैकेयी, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, कहते तब फिर मैया कैसे मुझको प्यार किया, तुमको ये देना होगा नहीं तो जगत का कल्याण नहीं होगा। आज चारों तरफ में रावण जैसे दुष्ट लोग मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, पराई स्त्रियों को जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहे हैं, लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते, भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, इसकी मर्यादा स्थापन करने के लिए आया हूं, इसके द्वारा तुम्हारी महिमा जगत में प्रचार करूंगा, सीता जी जैसी सीता जी की महिमा को जगत में कल मैं प्रचार करूंगा, भरत जैसा भैया का महिमा, जो भाई होना चाहिए तो कैसे भरत को, भरत के समान कोई भाई नहीं, इसलिए ऐसा भाई होना चाहिए, और लक्ष्मण सेवा के लिए दिन रात कैसे सेवा करता है, इस तरह से मैं ये सबका मर्यादा जगत में पालन करके शिक्षा दे करके जगत को मैं बचाने के लिए आया हूं, और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उन असुरों को दंड दे करके उनका विनाश करूंगा, इसके लिए आया हूं, यदि तू ये वर नहीं मांगेगी तो कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए मैया तुम कृपा करके हमको ये दे दो। अंत में राम के बहुत कहने पर, समझाने बुझाने पर वो मान गई, अच्छा बेटा तो तुम्हारे लिए ये करना होगा, मुझे ये 20 हजम करना है तुम्हारे लिए, 20 अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए 20 हजम करना है। इस तरह से यह बात वहां पर दबी रह गई। कुछ दिनों के बाद में भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल गए थे, और इधर में महाराज दशरथ के हृदय में एक भावना आई, भाई आज हूं कल मर जाऊं, और सारी प्रजाएं चाहती हैं कि यह राजकुमार राम हो और हमारा सब कुछ देखे सुने और हमारा उत्तराधिकारी बने। बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, ये रघुकुल की रीति है, इसलिए ये बैठे गद्दी पर और हमारे देखते देखते ये सब कुछ संभाल ले, ऐसा मैं चाहता हूं। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, बड़ी भारी सभा जुटी, उसमें नागरिक लोग आए, सब गुरु लोग आए, प्रधानमंत्री और सब मंत्री लोग, पुरोहित लोग, सभी उसमें वशिष्ठ याज्ञवल्क बहुत बहुत सब लोग आए। और उस समय में महाराज दशरथ ने प्रस्ताव रखा, मैं इस सभा में प्रस्ताव रखता हूं कि अब मैं बूढ़ा हो गया और प्रजाओं का देखरेख मैं नहीं कर सकता, मैं दुर्बल भी हो गया हूं, रामचंद्र सबल है, अब इसकी उम्र हो गई है, अब ये शादी इसकी हो गई है, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु, अब इसकी शादी हो गई है और योग्य हो गया है, 21-22 वर्ष का नवयुवक है अभी और सब विषय में योग्य है, और प्रजाएं चाहती हैं कि राजा यही राम हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि युवराज पद पर इसको मैं अधिष्ठित कर दूं। युवराज माने क्या होता है, राजा के रहते हुए जो कार्य संभालता है, अभी राजा तो नहीं है, युवराज है, और राजा के होने के बाद में, समाप्त मरने के बाद में वो राजा बनेगा, किंतु राजा रहेगा महाराज दशरथ और देखभाल सारा जो कुछ दायित्व ये राम के ऊपर में रहेगा, इसलिए युवराज पद को देने के लिए सभी लोगों ने एक साथ में कहा जी हम इसको अंगीकार करते हैं, हम सम्मान करते हैं। वशिष्ठ जी बोले जी बहुत अच्छी राय है, ये हो। अच्छा शुभ लक्षण देखो तो कौन सा साहित्य है, कौन सा समय है, अच्छा सा समय जिसमें काल तारा गण चंद्र सूर्य सब अपने अपने ग्रहों पर स्थित रहते हैं और सुशोभन काल में शास्त्र के अनुसार में इनका युवराज पद दिया जाए, कब होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने और दूसरे जो बड़े बड़े पुरोहित थे उन सब लोगों ने मिल करके देखा जी भाई इस वर्ष में बस कल ही दिन है, परसों नहीं है और कोई दूर में दिन नहीं, एक वर्ष के बाद में दिन है, तो कल ही ये दे दिया जाए। महाराज जी भी वो सब सारी बातें भूल गए हैं और उस समय में उन्होंने तब वशिष्ठ जी को कहा जे आप सारी चीजों की व्यवस्था करें, कल इसको युवराज पद सवेरे दे दिया जाएगा। और वहीं पर घोषणा कर दी गई और रात में भी घोषणा कर दी गई जे कल राम को युवराज का पद दिया जाएगा। बस एक ही दिन रात का केवल था, 12 घंटे का देरी विलंब, दूसरे दिन होने वाला है। मंथरा ने सुना कैकेयी की दासी, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, मंथर गति से चलती, कुबड़ी थी, कुबड़ी कुछ थी निकला हुआ, सीधी सादी नहीं थी और बुद्धि भी बड़ी पेचकश की जैसी थी। पेचकश जानते हैं ना, पेचकश जैसी थी उनकी, टेढ़ी मेढ़ी और राजनीति जानती थी। उसने कैकेयी के पास वो गई और बोली अरे मूर्ख, तुमको कोई ज्ञान नहीं, कल रामचंद्र राजा होने वाले हैं और तुम बड़े आनंद के साथ में घर में सो रही है, बड़े आनंद से है, कल क्या होगा जानती है, कौशल्या जी राजमाता होगी और तुम दास की माता होगी, दासी होगी, कौशल्या की दासी बनेगी और कैकेयी बनेगी राजमाता, उसका सभी लोग आदर करेंगे, तुमको कोई पूछेंगे नहीं, अभी समय है, अभी तुमको दो वर देने के लिए महाराज दशरथ ने कहा है, मैं जानती हूं, इसलिए तुम उनसे दो बार मांग करके अभी भी बच जाओ। वो कैकेयी मुस्कुराती हुई अपने गले का सुंदर हार निकाल करके कुब्जा को दे दिया, आज बड़ा शुभ तुमने खबर दिया, मैं भी चाहती थी रामचंद्र युवराज हो और वही राजा हो, मैं चाहती थी, आज मेरी इच्छा मेरे मन की मुराद पूरी हुई है, आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए उपहार के रूप में तुमको दे रहा। वो झट निकाल करके लेकर के फेंक दिया, मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं देखना चाहती, तुम बड़ी दुर्बुद्धि हो, मूर्ख हो, कुछ नहीं समझती, और बार बार ऐसा ही समझाने लगी। इधर में उनको वो याद आई, क्या बात, रामचंद्र जी ने नहीं, महाराज उसके पिताजी ने विवाह के समय में जो वचन दिया था जो इसी का बेटा राजगद्दी पर बैठना चाहिए, वो भी याद आई। और दूसरी बात वो भी याद आई कि राम ने हमसे ये बार बार कहा है ये विष हजम करने के लिए, मैं नहीं चाहती ऐसा वर, किंतु राम ने ऐसा कहा है, इसे जगत का अनिष्ट होगा, इसलिए ये वर मांगना चाहिए, नहीं तो देवताओं लोग का जो वर है वो निष्फल जाएगा, असुरों का संहार नहीं होगा, और सीता जी की महिमा और सब भरत की महिमा लक्ष्मण की महिमा जगत में प्रचारित नहीं होगी, मर्जा जगत की नहीं बनेगी, सब दुष्टों का ही राज्य रहेगा, इसलिए हमको तो ये वर मांगना होगा, चाहे चाहूं और न चाहूं। इसलिए विष का घूंट पी करके उसने संकल्प किया अब जैसे तैसे राम की बात को पूरी करने। इसलिए सवेरे होते ही को भवन में बैठ गई। को भवन जानते हैं, को भवन उसको कहते हैं कि जब अपने पति से सहमति न हो और पति उसकी बात नहीं मानता हो तो अपने कपड़े लत्ते स्त्रियां बाहर करके चिथड़े थीतड़े पहन करके और उनसे बात नहीं करती जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो जाए, खाना पीना छोड़ देंगी, श्रृंगार छोड़ देंगी। आप लोग भी ऐसे मत करेंगे, गड़बड़ हो जाएगो। तो वैसे कई कई जी बैठ गई को भवन में। महाराज दशरथ को पता लगा, अरे आज युवराज का पद देना है और कैकई कहां गई, खोजते ढूंढते 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 उनको पता लगा जी कोप भवन, कोप माने होता है क्रोध, मान भवन में गई है। अच्छा क्या बात हो गई, उसको कुछ चाहती है, उसको पूरा करना होगा। अरे कपड़े लत्ते यही तो चाहती होगी, श्रृंगार चाहती होगी, अलंकार चाहती होगी, उसको जितना चाहेंगे दे देंगे। गए और वो तो ऐसे बड़े क्रोधित होकर के लंबी लंबी सांसें ले रही हैं, उसके यहां पर पैर पर हाथ रखा, वो सांप की तरफ में फुफकारती ही उसको हटा दिया, तुम झूठे आदमी हो, प्रतिज्ञा करके उसको पूरा नहीं करने वाले हो। बोले जी क्या प्रतिज्ञा तुम कहो, तो इस प्रकार से कोप करने की जरूरत है, पहले कह देती। उन्होंने कहा तुम बोलो क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा जी मैं चाहती हूं ये बात तो कठिन है किंतु आपको जरूर करना पड़ेगा, आपको याद है देवासुर संग्राम की बात में आपने प्रतिज्ञा की थी, और हमारा बेटा यहां नहीं है और तुम राम को ये युवराज पद देने जा रहे हो, ये क्यों, कुछ गड़बड़ी है, सोचने की बात है, ये युवराज पद रहे उसमें भरत और शत्रुघ्न का होना जरूरी है, उनको बुला लेते किंतु बुलाए नहीं, क्यों। महाराज दशरथ चुप रहे, उनको सब बातें याद आई विवाह के समय में और इधर में सभी बातें देवासुर संग्राम, वो मौन हो गए। क्या चाहती हो, मैं चाहती हूं ये हमारा बेटा राजगद्दी पर बैठे, ठीक कोई बात, और दूसरा बार ये चाहती हूं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए, क्यों, ये क्यों कि लोग सब 14 साल में सब राम को भूल जाएंगे और ये अपने सुशासन से सब प्रजाओं को ठीक कर देगा, इसलिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। बहुत समझाया, भरत जी राजगद्दी पर बैठे कोई बात नहीं, राम को क्यों भेजती है, नहीं मानी, और अंत में ऐसा हुआ रामचंद्र जी को राजगद्दी के बदले में लक्ष्मण और सीता को लेकर के जाना पड़ा। और भरत जी ने क्या किया, राम को विदाई देते ही उन्होंने कुछ आदेश नहीं दिए, तुम जाओ, चुपचाप मौन होकर के रोते रहे रात भर। सवेरा हुआ, राम बुलाए गए, राम दशरथ उन्होंने महाराज दशरथ ने नहीं बुलाया, कैकेयी ने बुलवाया और कहा जिसे इसलिए रो रहे हैं, हमने 2 बार मांगे हैं। रामचंद्र जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता था हमारा छोटा भैया राजगद्दी पर बैठे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं 14 वर्ष बन रहूंगा, सारा जीवन भरत राजगद्दी पर बैठे, मुझको बहुत आनंद इसमें है। किंतु महाराज दशरथ जब ही रामचंद्र वहां से निकले सीता और लक्ष्मण जी को लेकर के, हा राम, और तीसरी बार हा राम नहीं कह सकते, केवल हा निकला, बस समाप्त। घर में रोने पीटने का ये सब लग गया, कहां आनंद उत्सव होने वाला और कहां यहां पर ऐसा ये ऐसी विपत्ति आई। रामचंद्र जी सबको छोड़ते हुए रोते हुए वहां से चले। कैसे इसका सब बहुत वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में बड़ा सरस और बड़ा हृदय द्रावक ये सब वर्णन है, जैसे रामचंद्र जी आए सब और वहां से आज करके वो केवट से मिले और किस प्रकार से सबको छोड़ करके आधी रात में वहां से पार होकर के चित्रकूट इत्यादि चले गए, ये सब का वर्णन है। इधर में वशिष्ठ जी ने राज्य की ये विपद अवस्था देख करके भेजा उनको अपने पुरोहित को, अपने किसी दूसरे पुरोहित को, ब्राह्मण को, जाना कुछ कहना मत, कहना जैसे महाराज वशिष्ठ ने आपको बुलाया है, बस इतना ही कहना भरत और शत्रुघ्न को। ये गया और वहां पर बोला जैसे अभी तुमको वशिष्ठ जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया, क्या बात है, पिताजी ने नहीं, ये सब पीछे हम अयोध्या में बतलाएंगे, यहां नहीं। उनकी बाई आंख फड़कने लगी, अशुभ सब चीज होने लगे। तत्क्षणात उन्होंने अपने मामा को और नाना को प्रणाम करके कहा जी मुझको अभी अयोध्या जाना है, बस तेज रथ पर वहां से अयोध्या के लिए लौटे। जब यहां आए तो देखा क्या, शहर में घुसते ही अयोध्या नगरी में जहां पर सब समय उत्सव होते रहते थे, आज वहां पर देखा जी वो विधवा की भांति अयोध्या है, सधवा नहीं, महाराज दशरथ नहीं है, राम नहीं है, सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, सभी विलाप कर रहे हैं, कोई उनके स्वागत के लिए उस नगर से एक व्यक्ति भी नहीं आया। ये सब भरत की और कैकेयी की परामर्श से ये सब बातें हुई, इसलिए सभी लोग भरत के ऊपर भी बड़े नाराज हैं, इसलिए कोई भी स्वागत के लिए कुत्ता भी नहीं आया, सभी तो रो रहे हैं कौन आए। किसी प्रकार से ये उन्होंने सोचा ये महाराज दशरथ से पहले मिलना है, फिर राम भैया से मिलना है, तो ये भरत अभी हमारे पिताजी अभी हमारी मैया के घर में होंगे, क्योंकि मैया के यहां अधिक रहते हैं, इसलिए कैकेयी के राजभवन में कनक भवन में हम चलें। कनक उसका मंदिर उनका नाम था, पीछे से उन्होंने सीता जी के लिए दे रखा था कनक भवन, अभी भी अयोध्या में वो सब चीजें हैं, दिखलाए जाते हैं। तो वो सोचा जे मैया के पास चलें तो पिताजी से और सबसे भेंट हो जाएगी। बस वहां पर पहुंचे, वहां पर गए, पहुंचते ही देखा मैया खड़ी है, उसके पीछे वो कुब्जा खड़ी है कि मंथरा, मंथरा जी खड़ी हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। उन्होंने केवल बेटे का स्वागत किया, भरत जी चौंके, मैया तू विधवा कैसे, ये कपड़े धारण किया, पिताजी कहां हैं? पिताजी अभी गोलोक सिधार गए, क्या हो गया, पीछे बतलाऊंगा बेटा, अभी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, खा पी लो, इसके बाद में सभी बातें तुमको बतलाऊंगा। कैकेयी ने कहा जैसे बात यह है कि मैंने महाराज दशरथ से तुम्हारा लिए राज्य मांगा, ये 14 वर्ष ये राजा होगा अयोध्या का, तो भैया कहां है, पिताजी कहां गए, तो वो विरह में प्राण छोड़ करके चले गए। भैया कहां है, तो वो तो वन में गया। लक्ष्मण जी कहां, वो भी। सीता जी कहां, वो भी चली गई। अब तो ये डकर करके रोने लगे। मंथरा जी बड़ी प्रसन्न होकर के, बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी मैया ने किया है, तुम्हारे लिए जो तुम राजा बनेगा, मैं राजा बनूंगा, ये किसने परामर्श दिया, तो मैंने दिया। ओ तुमने दिया, अच्छा ठीक है, इसका भी पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने शत्रुघ्न की तरफ में देखा, शत्रुघ्न उठ करके उसके कुबड़ पर एक जोर से लात मारी, बोले जे यदि तू मर जाएगी, इसलिए मैं डरता हूं, राम हमको हमारे ऊपर में क्रोधित हो जाएंगे, क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए स्त्रियों के ऊपर में और कुछ प्राण नहीं मारना चाहता, किंतु याद रखो अब फिर हमारे सामने मत आना। और भरत जी बोले कैकेयी से, देखो अब तुमसे हमारा कोई भी संपर्क नहीं, जो राम का विरोधी है वो उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजी कोटि बैरी समझ जद्दप परम स्नेही, तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी, बलिगुरु तजव कंत ब्रज बनितन भय जग मंगलकारी, जो सीताराम के प्यारे नहीं है, उनकी सेवा की भावना नहीं है, वो माता हो, पिता हो, गुरु है, स्त्री है, पति है, पुत्र है, इनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं। इसलिए आज से तुम्हारा और हमारा ये जो संबंध था, तुम हमारी मैया, मैं तुम्हारा बेटा, ये संबंध मैं समाप्त करता हूं। जीवन भर के लिए मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। अब से तुम केवल तुम्हारा संबंध यही रहेगा ये तू महारानी है और मैं राम का भाई हूं, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं। याद रखो यह संबंध सदा के लिए कटा। कौपी कह कही कांप, अरे बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ किया किंतु हमारा तुमने अनिष्ट किया, तुम हमारे हृदय को नहीं जानती है, बस उसे छोड़ दिया। कौशल्या जी के पास में गई, वहां कौशल्या जी तो विधवा वेश में बैठी हुई, और अभी उनका शव कहां है, मरा हुआ शरीर अभी राजभवन में ही किसी कड़ाही में तेल में डुबाया हुआ है, और औषधियों से जैसे सड़ जाए, भरत आएगा तो वो संस्कार करेगा। और उस स्थिति में कौशल्या जी पास, वो तो डकर डकर कर कर रोने लगी, उनके गोदी में बैठ गए, ये भी रोने लग गए, मैया मेरा भी इसमें कोई कसूर नहीं, मैं नहीं जानता, इसने हमारे बिना परामर्श के ऐसा किया है, मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम्हारा ही बेटा रहूंगा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ये तो खूब रोने में ये हो गई। इसके बाद महाराज वशिष्ठ को बुलाया, कहा जैसे हाँ अभी महाराज दशरथ का जो संस्कार है, मृत्यु का संस्कार, दाह संस्कार, ये सब विधिवत किया जाए। उन्होंने किया और करने के बाद में कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, ये राम के लिए सदा खाली रहेगा, राम ही आकर के बैठेंगे। इसलिए दाह संस्कार होने के बाद में फिर वो सारी प्रजाओं को लेकर के, पहले अकेले आ जाना चाहते थे राम को मनाने के लिए, चित्रकूट में उनको पता था, किंतु आज जब वो चले तो सारी सेनाओं ने कहा चतुरंगणी शरण, हम भी आपके साथ में चलेंगे। सारे पुरोहितों ने कहा जी हम भी चलेंगे, मैया भी, कौशल्या सुमात्रा बोली हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। महाराज वशिष्ठ और मंत्री परिषद सब उनके साथ में चला, सबको लेकर के चले। किस लिए? वही राज्य अयोध्या का वहीं पर उनके चरणों में समर्पण कर दूंगा और लेने के लिए वो बाध्य होंगे, इसलिए सबको लेकर के चले। जब चलने लगे तो कैकेयी जी केवल रह गई और कौशल्या और सुमित्रा उनके साथ चलने लगी, तो कैकेयी रोती हुई महाराज महारानी कौशल्या के चरणों में गिर गई, बोली ये बहन तुम हमको बचाओ, नहीं तो आज ही मैं मरूंगी, तुम भी अपने साथ में हमको ले चलो, हमें राम से जो मैंने बर मांगा है महाराज दशरथ से, वो फिर क्षमा मांग करके और राम को वो सारा राज्य मैं लौटा दूंगा, अपना वचन ले लूंगी, इसलिए मैं भी चलना चाहती हूं। महाराज कौकिल बड़ी दयाद्र होकर के उसको भी कौशल्या जी ने अपने साथ ले लिया, भरत की इच्छा नहीं रहने पर भी ले लिया, और इस प्रकार चित्रकूट के लिए रवाना हुए। किस प्रकार से वो वहां पर गए आप सब लोगों को विदित है। पार करते ही प्रयाग में भरद्वाज ऋषि मिले, उन्होंने उनका सत्कार किया, उसके बाद में आगे बढ़े चित्रकूट। जब पहुंचे तो ऊपर में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी विराज रहे हैं। सवेरे का समय जब वहां पर पहुंचे, लाखों करोड़ों लोग उनके साथ में, सेनाएं, चतुरंगणी और माताएं, सभी लोगों को लेकर के महाराज भरत जी ने कहा जी हमारी चतुरंगणी सेना इसके नीचे ठहर जाए, ऊपर में न जाए, नहीं तो पशु पक्षी जंगल ये सब नष्ट हो जाएंगे, नीचे यहां पर आराम करें, खाने पीने की सारी व्यवस्था हम यहीं पर करा देते हैं, और वहीं पर ठहरा दिया। और अपने अकेले शत्रुघ्न को साथ लेकर के, मैया को लेकर के और महाराज वशिष्ठ को आगे लेकर के, और वो चित्रकूट पर चलने लगे। यदि चित्रकूट गए होंगे तो देखें, आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम लोग तो कितनी बार गए हैं चित्रकूट में। जबकि वहां पर ऊपर चढ़ने लगे उस समय में महाराज ये लक्ष्मण देखा ये शोरगुल कहां से आ रहा है, हाथी घोड़े और चतुरंगणी सेनाएं अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रही हैं। उनको भरत जी के ऊपर में संदेह हुआ और पेड़ पर चढ़ करके सालमली वृक्ष जिसके लाल लाल फूल होते हैं सेमल के, और उसके ऊपर में चढ़ गए और चढ़ करके वहीं से देखा चित्रकूट से ऊपर से सारी सेनाएं वहां पर एकदम सज धज करके तैयार है। और ये भरत आ रहा है, वो नीचे से जल्दी से उतरे, भैया तैयार हो जाओ, चंद्रंगणी सेना के साथ में भरत लड़ने के लिए आया है, वो इतने से संतुष्ट नहीं हुए तुम्हें और हमें और सीता सबको मार करके समाप्त करके सदा के लिए निष्कंटक राजा बनना चाहता है। सावधान हो जाओ, अभी मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे लिए, मैं अपना सब कुछ लगा करके और भरत को आज जरूर खत्म करूंगा, चाहे ब्रह्मा शंकर जम भी कोई उनकी रक्षा करने के लिए आए उसको कोई आज बचा नहीं सकता, हमारे यहां से आज जरूर समाप्त करूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सदा के लिए समाप्त कर दूंगा और फिर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुमको लेकर के अयोध्या में राजगद्दी पर बैठाऊंगा, याद रखो। राम बोले जे जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी करने से पीछे अनुताप करना पड़ता है, पहले भरत जी का चरित्र देखो, मुझको ऐसा विश्वास नहीं है जो हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, वो तो सारा राज्य देने के लिए आ रहा होगा, हमको ऐसा ही भरत जैसा भाई नहीं, इसलिए तो थोड़ा सा धैर्य धारण करो, उसको आने दो और फिर उसकी बातों को सुन करके उसे युद्ध करना। किसी प्रकार से वो चुप हुए, शांत होने के बाद में थोड़ी देर बाद में भरत में आए, साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। रामचंद्र जी ने अपने दोनों बाहुओं से उनको आलिंगन करके और मिले और दोनों रोते रहते बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद में शांत होने पर माताओं से उन्होंने मिला, जिस प्रकार से कौशल्या से मिले, सबसे पहले आज कौशल्या से नहीं मिले, किससे मिले, कैकेयी से सबसे मिले, सबसे पहले जो उसको कुछ हृदय में ना आए, और फिर अपनी माता से, सुमित्रा जी से, गुरु वशिष्ठ जी से सबसे मिले, यथाजुग जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, और फिर उनको शांत करके बैठाया, उनसे पता लगा जी महाराज दशरथ जी तुम्हारे जाने के दिन ही में वो समाप्त हो गए, हा राम कह करके उनका भी संस्कार करके आए हैं, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के साथ और लोगों के साथ में, वहीं पर नदी है, उस नदी में क्या नाम है उनका, तमसा नदी या क्या, तो उसी नदी में जाकर के इमली के जो बीज होते हैं उसे आटा बनाया गया, पीस करके उससे उनका पिंड राम उनको दिया, मंदाकिनी वहां पर उनको दिया। इसके बाद में सभी लोग लौटे। अब हुआ जे आज तो ये हुआ और कल सभा होगी, और सभा में राम ये महाराज दशरथ जी भरत जी राम से निवेदन करेंगे जिसके लिए आए हैं। अब इस घर में यह तो निर्णय हुआ, और इतने में महाराज जनक भी तत्व ज्ञान की चरम सीमा पर बैठे हुए, महाराज जनक ब्रह्म तत्व को जानने वाले, वो भी सुनाए ना सीता जी के मैया के साथ में वहां पर पधारे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग वहां पर पधारे, सबकी बड़ी भीड़ हो गई। दूसरे दिन सभा होने वाली है, भरत जी को नींद नहीं है, शाम के समय में कौशल्या मैया के यहां गए, बोले जी मैया मैं तुमसे एक बात चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। कौशल्या जी बोली जी बेटा कहो, ये मैं चाहती हूं कि तुम राम से एक बार कह दो जो अयोध्या लौट चलो और राज्य ग्रहण करो, वो तुम्हारी बात को कभी भी टाल नहीं सकता, ब्रह्मा की रेख भी टाल देगा कि तुम्हारी मैया की बात नहीं टाल सकता है, तुम उनसे एक बार कह दो कि चलो अयोध्या में लौट चलो और राज्य ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी तो है ना, और सीता कभी जंगल नहीं देखी, वो जंगल में आ रही है, तो इसलिए तुम उनसे कहो। उसने कहा बेटा मैं ऐसा तो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, क्यों, क्या मैं धर्म के विपरीत कह रहा हूं? नहीं बेटा तुम धर्म के विपरीत नहीं कह रहे हो, तो भी ऐसा मैं नहीं कह, क्योंकि राम भी तो अधर्म नहीं कर रहा, मैया धर्म तो नहीं कर रहा है, किंतु माता जी के आज्ञा से वो लौट सकता है। ठीक है बेटा तुम कहते हो, किंतु मैं अकेली ऐसे कैसे करूंगी, क्योंकि पिता और माता दोनों ने मिल करके और उसको ऐसा करने के लिए बन जाने के लिए कहा, मैं अकेली उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़वा सकती, मैं अनर्थ नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूं। वहां से निराश हो गए, तो महाराज वशिष्ठ के पास में गए आधी रात में। अरे तुम अभी सोया नहीं? नहीं गुरुजी, मैं कैसे सो सकता हूं, मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करने के लिए आया। क्या निवेदन करने के लिए बोलो? देखिए पिताजी तब है नहीं, आप जो कुछ हैं माता पिता गुरु पुरोहित जो कुछ हैं मंत्री हैं सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि राम आपके आदेश को कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है। आप राम से एक बार कह दीजिए जब तुम अयोध्या में चलो और वहां का राज्य संभालो, वो कभी भी आपको अस्वीकार नहीं कर सकता है, वो डरता है आपसे, आप पिता तुल्य भी हैं गुरु तुल्य भी हैं, इसलिए आप एक बार उसे कह दीजिए। बेटा बात तो ठीक कहते हो किंतु मैं कैसे ऐसे कहूं, अधर्म तो मैं कह नहीं सकता, रामचंद्र तो धर्म पर दीघ है स्थिर है मर्यादा युक्त है, मैं ऐसा कैसे कहूं जैसे वो धर्म को छोड़ करके अधर्म करे, जब पिता और मैया ने दोनों ने आदेश दिया है उसको पालन करना है, तो फिर ऐसा मैं कर सकता हूं, उसे ये कहूंगा यदि तुम राजी हो उसके बदले तुम जाओ वन में और वो यहां रहे, ऐसा तो हो सकता है, किंतु यदि वो राजी हो स्वीकार करे तो इतना मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारे लिए भर जा रहा है तुम यहां पर रहो यदि तुमको इच्छा है तो। उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कहेंगे डायरेक्ट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जानबूझ करके भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हाँ? कितना हुआ? 45 मिनट हो गए हो? ओ वन कीर्तन जय कुंज बिहारी वेरी इंस्पायरिंग टोन नॉट लाइक मीन रात के समय में उसी समय में वशिष्ठ जी से निराश होकर के भरत जी सीता जी की मैया सुनैना के पास में गए, बोले जी मैया तुम ही केवल मेरी लाज बचाओ और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, यदि तुम्हारे पति महाराज जनक जी यदि आदेश दे दे राम को तो इस समय वो पिता तुल्य हैं गुरु तुल्य हैं, उनकी बात को राम नहीं टाल सकते, इसलिए अपने पति से कहो जो वो कहें जो अयोध्या का राज अभी लेकर के ले लो और अयोध्या लौट जाओ, वो लौट जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी बेटी सीता को कितना कष्ट है समझो, बिच्छू और मच्छर काटेंगे, जंगल में रहना सहज नहीं है, सांप बिच्छू ये सब निकलेंगे, गर्मी सर्दी बड़े बड़े भयंकर दुष्ट राक्षस लोग हैं पकड़ करके ले जा सकते हैं, इसलिए तुम जल्दी से राम से कहो अपने पति से कहो जो राम को लौटा दे नहीं तो बड़ा भारी अमंगल होगा समझो। उसने कहा जैसे मैं अपने पति से निवेदन कर दूंगी, उन पर मेरा वश नहीं है, वो बड़े भारी तत्वज्ञानी है, जो कुछ अच्छा समझते हैं वही समझते हैं, मैं तो उनका आदेश पालन करके उनकी सेवका जैसी हूं, कल सवेरे उनसे मैं बतलाऊंगी। ठीक, इतना तक हो गया भरत जी चारों तरफ से निराश हो गए बड़े दुखी, नींद नहीं आई, सवेरा हुआ सब लोगों ने स्नान किया निक अपना पूजा पाठ सब समाप्त करके बड़ी भारी गैदरिंग और सभा हुई, एक तरफ में राम और एक तरफ में भरत बैठे, जिधर भरत में बैठे उस समय उनकी माताएं एक लाइन से बैठी तीनों और अयोध्यापुर के जितने निवासी थे उस ओर बैठे और दूसरे तरफ में राम बैठे और लक्ष्मण बैठे और बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग उस तरफ में बैठे, सामने में वशिष्ठ जी महाराज जनक और बड़े बड़े लोग बैठे, बड़ी अद्भुत सभा निराली अलौकिक सभा हुई मानो ये देवताओं की सभा हो रही, और उस सभा में महाराज जनक बीच में बैठे। महाराज वशिष्ठ ने निवेदन किया, अयोध्या की नाव डगमग कर रही है बीच समुद्र में, इसको किसी हाल से बचाना ये महाराज जनक का काम है। अभी दोनों कुलों के पिता भी हैं, बुद्धिमान हैं, तत्वज्ञ हैं, ब्रह्मवादी हैं, निर्लोभी हैं, किसी चीज में इनकी आसक्ति नहीं है, इसलिए अपने निर्णय से अयोध्या का राज बचाएं या डुबाएं, ये अब महाराज जनक के ऊपर में है। इसलिए जनक जी से मैं निवेदन करता हूं कि उचित निर्देश देकर के अयोध्या का राज्य बचाइए और इन दोनों भाइयों का भी सबका कल्याण हो, माताओं का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। महाराज दशरथ, महाराज जनक वो उस विश्वास सभा में थे, वो उठ करके उन्होंने शंकर जी अपने गुरु को प्रणाम किया शंकर जी को, और प्रणाम करने के बाद में बोले, राम और ये भरत तुम दोनों सामने बैठे हो, जो मैं आदेश दूंगा न्याय करूंगा वो तुम्हें मंजूर है, मानोगे? तो जरूर मानेंगे, पिता के स्थान पर आप ही हैं, गुरु के स्थान पर आप ही हैं, आप जैसा कहेंगे हम लोग आपके निर्णय को मान लेंगे, मानेगा तुम? तो हाँ मानूंगा, उनसे कहा तो हाँ मैं भी मानूंगा। ठीक, कुछ देर तक ध्यान किया और ध्यान करके बोले, जे देखो भरत तुम प्रेम की सीमा है, अथाह समुद्र तुम प्रेम का है। प्रेम कोई मर्यादा अपना नहीं जानता, मर्यादा उसमें बह जाती है, धरी की धरी रह जाती है। इसलिए तुम्हारी विजय हुई, तुम जो कुछ कहेगा राम को वो मानने के लिए बाध्य हैं। सुनकर के प्रजाएं बड़ी उत्कंठित होकर के बड़ी आनंद से हो गई, सारी सभा बड़े आनंदित हुई, जैसे ये भरत की जीत हुई, माने भरत जब कहेगा चलने के लिए तो ये चलेंगे और राज्य भी संभाल लेंगे, सब समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा, जे देखो तुम प्रेम की सीमा है अथाह समुद्र है, और राम मर्यादा का हिमालय है, उसकी चोटियां बड़ी लंबी ऊंची हैं, वो मर्यादा सब प्रकार की मर्यादा का वो अक्षय अटल अजय वो हिमालय है, वो अपनी मर्यादा से टच नहीं होगा, मर्श नहीं होगा, भले ही समुद्र में वो डूब जाएगा, पैसिफिक ओशन में डूब जाएगा। हिमालय कितना ऊंचा है? 7 मील से थोड़ा सा और ऊंचा है, और पैसिफिक ओशन और भी गहरा है, उसमें हिमालय डूब जाएगा, बात तो ठीक है, राम की मर्यादा डूब जाएगी उसमें, किंतु उसकी भी एक मर्यादा, टस से मस अपनी मर्यादा से डूब तो जाएगा, बहेगा नहीं, बहुत गंभीर इसके आशय हैं, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां पर प्रेम का अथाह समुद्र है वहां पर मर्यादा रूपी ये चीजें नहीं रहती, वो बह जाती हैं, किंतु राम की मर्यादा जो है वो नहीं बहेगी, भले ही डूब जाएगा, तो वो डूब गया तुम्हारी जय हुई। कि हाँ एक बात और समझो, तुम्हारी जय हो गई, किंतु प्रेम की अपनी एक मर्यादा है, खूब ध्यान से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रेम किसको कहते हैं? जो जिससे प्रेम करता है, जैसे तुम अभी प्रेम कर रहे हो राम से, तो ये तुमको समझना होगा, ये अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देना होगा, ये समझो जो उसको हम कैसे अपनी सेवा से प्रसन्न करें और वो क्या चाहता है। क्या कहा? उसमें जो प्रेम करने वाला साधक है वो अपनी सारे तन मन वचन बुद्धि सबसे ये कहेगा, जिसे हमारे प्रभु क्या चाहते हैं वैसा ही करेगा, उसके विपरीत नहीं कर सकता है। इसलिए जाओ तुम राम से पूछो, राम को किसमें प्रसन्नता है ये पूछो, और तब उसको पालन करने के लिए पूछो, तब ठीक है। उनकी आंखें खुल गई, अब तक तो मैं ये देख रहा था ये उनके जाने से मुझे दुख होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मैं चाहता था। और हमारे कुल की रीति है कि बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, किंतु यह बात तो ठीक नहीं है, राम हमारे आराध्य हैं, तो यहां पर यह देखना हो कि राम को किस बात में प्रसन्नता है यह देखना है। आ रहा है समझ में? राम की प्रसन्नता देखना है, ये भक्ति है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम अनुकुल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति, ये देखना है अपने तन से मन से वचन से आत्मा से भावना से कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की सेवा के लिए होगा, अपने लिए नहीं। अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर देना पड़ेगा। अब भरत जी की आंख खुली, उन्होंने कहा ओ अपनी अब तक इच्छा ये थी कि राम राजा बैठेगा तो मुझको बड़ी प्रसन्नता होगी, ये तो भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं है। वो झट राम के सामने वो गिर पड़े चरणों में लकुट की भांति, बोले जी भैया अभी तक मेरी आंखें खुली, अब तुम चाहो क्या कह, तुम किसमें तुमको प्रसन्नता है, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी देखो महाराज जनक ने तो कह दिया ये तुम्हारी जीत हो गई है, इसलिए मैं अयोध्या का राज्य अभी ग्रहण किया, ये समझ लो मैंने ले लिया, अब मैं अयोध्या का राजा हूं, मैं हूं तुम नहीं है, तुम्हारी बात नहीं पूरी हुई, मां मैं इसमें खुश हूं। सब लोग बड़े खुश हुए, अब तो लौटेंगे, किंतु देखो एक बात करो, मैं राजा इसका हो गया, 14 वर्ष के लिए मैं तुमको इस राज्य का प्रतिनिधि बनाता हूं और अपना ये खड़ाऊं तुमको देता हूं, इसकी पूजा करके इसे आदेश लेकर के 14 वर्ष तक के लिए मेरा प्रतिनिधि होकर के अयोध्या का राज संभालो, ये मेरे लिए आदेश है, मैं इससे प्रसन्न होऊंगा, और मैं 14 वर्ष समाप्त होता है एक सेकंड की विलंब नहीं होगी, मैं तुरंत आ जाऊंगा और अपना राज्य ले लूंगा। ये सुन करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, कैसा सुंदर निर्णय, भरत जी की भी आंख खुल गई, कैकेयी की भी आंख खुल गई, माताओं की भी आंख खुल गई, और फिर उन्होंने अपना पादुका उनको दी और ये आदेश दिया कि 14 वर्ष तक तुम वहां रह करके अयोध्या का पालन करो और मैं आ जाता हूं। फिर भरत बोले जी मैं ठीक है, मैं आपका आदेश ग्रहण किया सिर पर, और ये पादुका को आपका प्रतिनिधि लेकर के मैं इसकी रोज पूजा करूंगा 14 वर्ष तक, किंतु जो ही 14वां वर्ष समाप्त हो जाएगा सवेरे आएगा, और यदि नहीं आएंगे तो शरीर को जला करके भस्म कर दूंगा, ये भी मेरी प्रतिज्ञा है। राम बोले जी एक मिनट की देरी नहीं होगी, मैं उसी समय में आ जाऊंगा। कैसा भाई, कैसा प्रेम, कैसा उदाहरण, उसमें राम की सेवा, कौशल्या का धैर्य, सुमित्रा जी का, सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी ने आदेश मांगा, भैया मुझे आदेश दो मैं राम की सेवा करूं, तो वो क्या बोली सुमित्रा, वो मेरा बड़ा भारी भाग्य है जो तो मैंने तुमको कोख में धारण किया जो राम की सेवा के लिए जा रहे हो। उनकी पत्नी ने भी ऐसा ही कहा। इस तरह से एक एक जब आदर्श पर विचार करते हैं रामचंद्र जी का, था एक एक अलौकिक चीजें आती हैं। भक्ति किसको कहते हैं, भाई का प्रेम किसको कहते हैं, यहां पर राज्य कैसा बन गया, फुटबॉल, कभी रामचंद्र जी फुटबॉल से एकदम गोल में, अब एकदम गोल में गया भीतर, और उधर से भरत जी ने गोल मारा और चलाया राम के राज्य को, इस प्रकार से फुटबॉल जैसा खेल रहे हैं। है आजकल ऐसा, ये देखिए तो कौरव पांडव उसी युद्ध के लिए, उसी के लिए तो लड़ने लग गए, किंतु तब तक कभी धर्म का पूरा भाव था। और कलयुग में देखो मैया को भी बाप को भी थोड़ी सी संपत्ति के लिए मार डालेंगे, जीवित होते हुए ही अभी जीता है अभी लिख दो पूरा, नहीं तो उस भाई को तू दे देगी, बस शूट कर देंगे, ये कलयुग है। इन सब चीजों का हमारा आदर्श, हमारी संस्कृति बड़ी महान है, उस महान संस्कृति से आए हैं, आप लोग भी वहां से ही आए हैं किसी प्रकार से, मैं याद दिलाने के लिए आया, अपनी संस्कृति को मत भूलो, आए हो जीविका का निर्वाह करने के लिए करो, अपने इस महान संस्कृति को याद रखो, भाई भाइयों का प्रेम, राम और लक्ष्मण और सीता इनके समान, पत्नी बने तो सीता जैसी, पति हो तो राम जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा, ये सब आदर्श चीजें हैं। अब समय भी हो गया है, कल हमको बहुत सवेरे उठ करके जाना है, इसलिए यहीं से कह करके अपना क्षमा मांगता हूं, फिर कभी आप लोग सुजोग देंगे, बड़ी बड़ी सुंदर रसीली कथाएं सुनाएंगे, आप लोग का चित्त जरूर परिवर्तन हो जाएगा, आसक्ति छोड़कर के संसार में रहना सीखो, सबसे प्यार हो किंतु अनासक्ति के साथ में और आसक्ति कृष्ण के चरण में हो। यही कह करके अपना समाप्त करता हूं, यदि कोई कटु बात निकल गई हो तो आप लोग क्षमा करें, हम इस देश में आए हैं इसी चीज को, संस्कृति को देने के लिए, आपको जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए, पैसा के लिए नहीं। पैसे के पीछे हम लोग नहीं, ये तो हमारे देश में कहीं भी रहेंगे रोटी दो मिल जाएगी, कपड़ा सभी लोग दे देंगे भीख मांगने पर भी, और नहीं कोई नहीं देगा तो मुर्दा घाटी में तो कपड़े पड़े रहते हैं उसको धो करके हम पहन लेंगे। इसलिए पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे हृदय की जरूरत है, जिस हृदय को लेकर के मैं और कोमल मीठा सुगंधित करके कृष्ण के चरणों में राधा जी के चरणों में अर्पित कर सकूं। आप लोग इस बातों को याद रखेंगे अपने जीवन भर, और ऐसे ही सब चीज अपने हृदय को करने की चेष्टा करेंगे, जैसे राधा कृष्ण के चरणों में आपकी अटूट अनन्य भक्ति हो। गौर प्रेमानंदे दश
His mantra given by him, the mantra given by him, or they will not be active. They will not practice. Very soon they should try. Okay. Do you think that how many days, how many years you have taken initiation?
I was first.
In which year? 23 years.
Okay. Have you developed? Are you really realizing that you are happy and you are advancing?
No.
Then why you are wasting your time at once today, you without any delay? Do you want to serve Krishna?
Yes.
Yes. Then why you delaying? Are you thirsty? If you are thirsty, then at once you should take water. Don't delay, otherwise you will die. So if you want to serve Krishna and you have thirst for that, really if you are hungry, at once, without delay. Tomorrow what will be done? No one knows. So why not today? And if today, then just now?
Please.
This is the symptom of any wise person, intelligent person. Otherwise no intelligence. Very soon, you should try. Don't delay. So, I've helped all. I may help you both.
We will serve you forever if you can help us.
He wants to take
shelter. So why delaying? Don't delay. Don't delay. If you have good faith, strong faith on in any devotee, and who is really realized so, and who can help you, you should take initiation from that person. First judge yourself whether he can help you or not. And then, very soon you should try to take. This is the process. And then next day you will realize something. Very wonderful, very wonderful.
It has been very hard. I feel I have no help in my spiritual life.
What?
He says it has been very difficult, hard for him, because he doesn't see that he has any help in his spiritual life.
Oh, because you are not sincere. If you are sincere, I must have the service of Krishna. Surely I will. Then you will seek any process. And then you will adopt that. If you are really thirsty, you will search water here and there. Very soon you will have water and drink. But don't take bad water.
Stale water.
No? Otherwise disease may come and you will be sick.
This is Malcolm. Have you introduced him?
No.
No, this is Malcolm.
Malcolm.
He has called up yesterday and the day before also spoken with Raghunath Prabhu. He makes a study about the Hare Krishnas. And for many years, perhaps? How many years?
3 years.
3 years. And he became very attracted. He went to India, to Vrindavan, Mayapur. He mainly spent his time with ISKCON, but he also discovered your books. And he has read your books, and he heard that...
What book he has read?
I haven't read many books. I've read some lectures
from the last time you came here in Australia. Mm-hmm.
When you came to Australia, the devotees made a book about your lectures, and he has read some of these lectures.
Oh, there are so many of my books, very powerful. And really you can search so many things, pearls and nectar from these books. And it will help so much. You know, thus this world has been created by God, you know?
I'm very steeped in the materialist mode of knowledge, I think.
Who made you? Who gave this body to you?
I don't know.
Huh?
I don't know.
Oh, you should know.
Sorry?
You should know all these things. And if you are sincere and want to know, oh, Supreme Personality of Godhead, He will inspire all these things. And He will send you to a person that you can explain all these things. Can you tell that watch, hand watch, please? It is made by anyone? It has been made or it has come automatically? What?
He said that he thinks that it was made by people.
Achha. Can you search, discover who has made it?
If I try.
Surely you can. You can see the where made in and go to company. And company will tell that in my this company, this part is here, this part here, 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 all were made. And some these experts here and here all made one parts. And in this company all are added together. And then it has been given for sale. And you can discover the persons. No? Similarly, from where this world comes? From where? There is anyone who can make it. Oh, you know that you came in the mother, your mother's womb?
You came in the womb of your mother?
Yes.
You know? Who is your father, you know?
Yes.
Never. Never. You cannot tell that he is my father. Oh, your mother may tell. And if he has told, right, then you can know from him who is your father. Otherwise, at the time of meeting your father, mother, and when you came from home, you never knew all these things. Who gave your birth? No? So it depends on your mother. So, the scriptures and the knowledge, high class of devotees, everything in them, they are like mother. If they will be very merciful, they can explain everything from where this world came. Do you know that whole the doctor and scientists cannot stop your old age? Very running quickly your old age is coming. After 50 years, will you be old or not?
I will be old.
Hmm? Achha. Who are you?
My name is Malcolm.
Oh, you are talking with me? Same person?
Yes.
Same person? Having this watch, wristwatch and this pant and shirt? This person? But can you tell then when your soul will go away? Then can you talk?
When
can you
soul
talk with
is
me?
The body, can this body
can you
still
answer?
Speak?
My body can't speak. My soul is gone.
Why? Your body. Your body and you are same or separate? Try to think.
I don't know.
Oh, have you gone to school and college?
Yes.
Huh?
Yes.
Have you learned something from there? Not soul, but worldly things you have all known from them, something?
I've learned a little bit about
that. A little bit, yes, little bit. But you had learned from there.
Yes.
No? You paid some fee for that? You have done? Then you should come to us and pay some fee for that. And we will teach you all the transcendental things very soon, quickly. You cannot know by yourself. Never, never, never. Oh. Have you tested any mango?
Yes.
How many times?
Not many times, actually.
Oh, but...
Maybe 10
times.
Some sweet something?
Yeah.
How sweet? Can you explain?
I need to compare it to something else. It's quite
Why? Sweet. You should test... You should tell me
yes,
what you tested, what kind of test came in your tongue. You should explain.
It tasted like mango. It
was sweet. Oh, like sugar?
Yes, very sugary.
No sugar. No. Not like sugar.
No, not like sugar. It was sweet.
Oh, you, what to you? Anyone cannot define it. If anyone has tasted mango, then he will tell, oh, this is like mango. But what like? Like what? If I will tell, you cannot
know,
realize. So transcendental things, oh, there is a soul in yours, this body. This body is like garment. But you cannot No, you are interested now in this physical body, who will die? So, those who are realized persons, those who can explain really, which has been explained in Indian Vedas, Upanishad, discovered about thousands and thousands years before. Now again you can realize in that process and you can know yourself. But without help of any devotee, you cannot. So, if you want to discover anything about this, totally you'll have to be Krishna conscious. And then you can. We are trying. You are in process. Something we have realize something, little bit. So this is the process. Hare Krishna. If you want to discuss some more thing, other time you can come to me and I will help you.
He was hearing from ISKCON devotees.
They cannot do anything.
Then he discovered that everywhere they were speaking about Narayan Maharaj, Narayan Maharaj, Narayan Maharaj.
Oh.
That is why he came to hear from you.
But you should know Narayan Maharaj is very tricky. First he will keep you in his pocket and then you, he will give.
I've been doing this study of Hare Krishna and I've been to India, I've been to Sridhar Mayapur, Sridhar Vrindavan, but my study has been focused here in Sydney, and every time, sometimes a devotee will mention Narayan Maharaj, but every time a devotee mentions Narayan Maharaj, it's very hushed, it's very quiet, and we have to hide to talk about Narayan Maharaj. Why can't ISKCON devotees talk about Narayan Maharaj openly?
What?
He said whenever he meets someone in the last 3 years and they speak about you, then very secretly they have to speak about you. And
yes.
He is wondering why they cannot openly discuss all your
they cannot
glories
do.
In ISKCON.
Because they are my children's. I think they are my children's. They are disciples of my bosom friend and my Shiksha Guru. Very powerful. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. So they know that his very dearest of Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And there is transcendental relation between them. And if he will come in our area, all will be attracted to him. They think that all their disciples are their wealth, their
property.
And the fear that, oh, if Narayan Maharaj called, oh, he will collect all the money and all the disciples. But I don't want. I'm self-satisfied. I never want. But now I know that they are ignorant. And that is why their Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, told me personally and to also them that you should help my devotees, my all these disciples. I want without self-gain. But even they fear because ignorant. If not ignorant, then they would have come to me, would have helped so much, lot of. So they tell, but secretly. Even I help them, and I want to help them, and I help, in any way I am helping them.
Can the gurus in ISKCON help devotees?
What?
Can those who are gurus in ISKCON, can they help devotees?
They can help up to some limit that they know. After that, transcendental things they cannot help. They can help in money making so much. Oh, that you should give up four kinds of basic principles. Don't take eggs, meat, wine. And you should chant name. And you can read Bhagavad Gita. They can do. And in this way, they can help so much. They can make a platform. But on platform, what should be kept? Oh, sometimes they are in doubt. We are not in doubt.
Can there be no Uttama Adhikaris in ISKCON ever?
It may be not absurd. In this world there are so many Uttama Adhikari. But if a man is at least Madhyam Adhikari, in Madhyam Adhikari also not, Madhyam Uttam, oh, he can discover. If you are not MA, can you judge that this person is MA?
You know what is MA?
Sorry?
If you have an MA degree,
if anyone has no degree of MA, he cannot distinguish that he is MA or not. If our judge or lawyer, how you can know? If you are not lawyer, you don't know any law. How can you recognize him? So we should first try to be like that. And believe in any high class of devotees who is totally disattached to this world, no worldly desires. And who can remove all kinds of doubts and who has some realization of Krishna. Oh, he can help. Any question? Sometimes you can come and do, and I will try to help you. But better, if you want to realize something about this and to discover, then have put a tulsi and chant. At once begin. Then Krishna will be merciful and he will accept you. Oh, I should be merciful to him. And automatically mercy will come. This is the process. If you want to study, oh, first go to school and be admitted. Your name will be registered there. And then they will have a seat, give a seat to you. And then they may teach. Otherwise, no. So this is the process. In Gita, it has been told, tadbiddhi pranipatena pariprasnena sevaya. First go to that class of, high class of Guru, and do pranam. What means? I have taken your shelter. And then you can ask so many questions in humble mode. And then serve him. Then all automatically you can learn. Very easily. Arjun went to Krishna and he told that what I learnt I have given up. My heart is now empty. I have taken your shelter. Now totally I have given, surrendered to your lotus feet. Please remove my old doubts. Then when Krishna knew that he has totally surrendered, then he began to tell him. And he used to take it. Otherwise, you cannot. So this is the process. All right? I think that if you will come to me, you will learn so many things. And you will be satisfied. Surely, satisfaction will come. General person cannot tell like this. Never.
परमेश्वर
जी बहुत अच्छा नाम है बहुत अच्छा नाम फिर
इनकी पत्नी
वो हैं ये लोग यहीं पर रहते हैं सिडनी में
पहले एफजी में हमारा
वहां पर आपके
हमारे कपड़े में काम करते हैं अभी यहां है
तो वहां से चले आई
हैं और इनकी बच्ची है
बहुत अच्छा ओरिजिनली ये लोग गुजरात के थे
नहीं
दक्षिण भारत
साउथ इंडिया
बहुत अच्छा आप लोग भी जीवन में सुखी होइए हिंदी जानते हैं और यू शुड ट्राई टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड इन दिस लाइफ एंड आफ्टर दैट लाइफ यू मस्ट वेरी क्विकली वी आर मॉर्टल एट एनी टाइम वी कैन डाई
Every day we chanting, every day, at least minimum 4 hours.
Oh, chanting, only chanting is not sufficient, something more. Oh, we should try to have a very thick relation with Krishna. Have you any relation? Anyone has given relation? Have you relation with your wife? Who gave this? This relation was given by whom? His father?
Yeah, my parents. Yeah.
Her parents came and selected you and your father were angry and then her father donated you and this in front of fire sacrifice was there and so many persons were there.
Witness.
Evidence?
Witness. All were witness.
Oh. Then what is your relation with Krishna, who gave it? Oh, this is most important. Then that relation he will accept. And then you can chant and remember them. Can you expend 1 lakh rupees for her if she is sick? Can you? Understand?
If your wife is sick, you can spend 1 lakh rupees for her?
Yeah, I can.
Yeah. If there is short of money, can you sell your property for her? Achha, can you do for other ladies?
No.
Why? Why? Because she is your wife. No? So if Krishna will see that, he is my, and he has thick relation with me, any relation, that Krishna is your son. Krishna is your friend. Krishna is your beloved. Among three relations, if you had. Sometimes he is my Prabhu, myself, like servant, like Ramanuj, in this way. So, in any way, we should have a very thick relation with Krishna. And that relation will be given by high class of devotee. And he is called Guru. So, don't delay And we should try to have that relation. And if she is weak, she cannot do any job in your house. But even she is the master of whole house. No? If a servant comes daily and you are paying $100 daily, but you cannot believe him now on that servant. No? If she is not doing anything, even she is your wife and she is the master of all your property. So in this way you should know. If you will chant less or more, no harm. This thick relation would be there. And this is the process of serving Krishna. And this is pramukh. This is important. And this is called diksha. This is called I am becoming disciple of this. They will realize your soul. How beautiful, sweet your soul is. What is the transcendental relation between your soul and Krishna and Radha? They know. When they will see, or at once they will judge. They are Guru. Kitna time hua?
11:30.
Main aaya isliye jab log aaye hue hain. I only came from up that they have come with so much hope, I should go and talk with and discuss something. Sometimes we come, descend from high class stays, only to help them. Otherwise we have no need to come from India here. What we have to take in this country? Nothing. There is nothing to take from this country. From New Zealand, from here, from Australia, from Latin Americans, and here and there. What they can give? Nothing. Only our Gurudev told that you should go and preach, help others. I to ghar bhi jana hai na? प्रवचन के लिए वहां तो साधारण रूप में मम्बलम्बा में बहुत अच्छी तरह से कुछ भगवान की लीला कथाओं और गूढ़ विषय में कुछ बोलूंगा क्योंकि वहां पर पुराने लोग हो गए हैं ना 5-7 बार हो गया नए लोगों से तो यही बात है व्हाट आई टोल्ड You heard? You are married?
Yes, I'm married.
No, he? No. Where is your husband? Who is your husband?
My husband, his name is Mandana. He was in Vrindavan, very
proud.
He's from Byron Bay, near Mawalapa. He spoke with you very briefly.
Oh, Kibal Chair.
Her husband was with you in Brajamanda Parikrama.
What name?
His
children also?
No, he went alone.
Oh. Strong? Yeah, I remember. Yeah.
What name?
Mandana.
Mandana.
Brother of Srimati. He was in Dasan with me in Vrindavan. That is my Mandana.
Your mother? You introduce your mother?
Mother, yes. This is Mandana's mother.
This is her mother.
My mother-in-law. Mother-in-law.
And your mother also?
Yes. Yes.
I cannot believe it.
Huh?
This is her mother, she says, but who will believe it?
I can believe. I can. Really, mother is who? Who can support and nourish? Or really, she is mother.
She is a very good mother. Best mother.
If she is good, then I also want to make her mother. My mother. We should go.
Yes.
ठीक है कितने बजे निकलना है यहाँ से 6 बजे तो 6 बजे निकलना है
6 बजे निकले 45 मिनट लगेगा
हाँ तो वहां पर 5 मिनट जा करके ब्लेसिंग